राजा श्री भरत अपने चरम शरीर में, अंतिम शरीर में, जड़ भरत के रूप में पूर्ण अनुभव के साथ, जैसा कि कल आप लोग दोपहर के ब्रह्मचारी क्लास में सुन रहे थे, जब संसार के तीक्ष्णता का अनुभव हो जाए कि संसार दुखमय है, अशाश्वत है, दुख से भरा हुआ है, यहाँ का हर संबंध धोखा है और हर सुख दुख का ही बदला हुआ रूप है, इस तरह की जब अनुभूति हो जाए तब आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए व्यक्ति को गुरु के शरण में जाना चाहिए। और गुरु के शरण में जाकर आध्यात्मिक जिज्ञासा करनी चाहिए। और वह कृष्ण तत्वेता गुरु जो अपने भक्ति से, अपने समर्पण से भगवान को प्रसन्न कर चुका है और भगवान के दिव्य लीलाओं का अपने जीवन में विज्ञान अनुभव किया है, बहुत भगवान के भक्त वात्सल्य आदि गुणों को अनुभव किया है, तो अपने द्वारा सुंदर प्रमाण के साथ अपने शिष्य को समझा सकता है। तो कल भक्ति के लिए संसारिक तीक्ष्णता का अनुभव बहुत जरूरी है, इसको हम लोग कल विचार कर रहे थे। तो जब तक भौतिक संसार के तीक्ष्णता का अनुभव नहीं होता है तब तक भक्ति के सुख का आस्वादन नहीं हो पाता। कोई भूखा व्यक्ति ही भोजन के स्वाद का अनुभूति करता है, कोई धूप में थका मंदा व्यक्ति ही वृक्ष के शीतलता का अनुभव करता है। धूप में चलने वाले को जब पेड़ मिलता है हरा हरा छाया तो बहुत अच्छा लगता है, ठंडा। उसी प्रकार संसार दुखमय है, हर एक व्यक्ति बहुत तुच्छ स्वार्थ से व्यवहार कर रहा है और उसी दौड़ में हम भी पड़े हैं। बहुत अनुभव के बाद व्यक्ति भगवान के स्वरूप को समझ सकता है। भागवतम में एक उदाहरण है सातवें स्कंध में कि महाराज प्रहलाद महाराज निर्द्वंद निश्चिंत रूप से घूमते थे, इनको कोई इनका शत्रु नहीं था और देवताओं और असुरों सबके प्रिय थे। असुरों के तो लीडर थे ही, देवताओं के भी प्रिय थे जो उनके विरोधी थे। तो एक दिन अकेले घूमते हुए पर्वत की तलहटी में जा रहे थे, रथ से जा रहे थे, तो देखे कि एक धूल पर बैठा हुआ बड़ा निश्चिंत प्रसन्न मुद्रा में एक महात्मा है और स्वस्थ शरीर है, चेहरे पर अद्भुत प्रसन्नता है। तो रथ से उतर कर प्रणाम किए, यद्यपि प्रहलाद महाराज पहचान नहीं पाए कौन है, लेकिन उनके प्रसन्न चेहरे को देखकर प्रणाम किए और पूछे आप कौन है और आपके प्रसन्नता का क्या कारण है, क्यों प्रसन्न है। तो उस धरती पर लेटे हुए बैठे हुए व्यक्ति कोई दूसरा नहीं, भगवान दत्तात्रेय थे। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, ऐसे मैं संसारिक लोगों के सामने मौन रहता हूं, किसी की बात नहीं सुनता कौन क्या कह रहा है, लेकिन हे प्रहलाद, तुम भगवान के बहुत प्रिय हो, तुमसे बात करना ही जीवन की सफलता है, तो मैं तुम्हारे जैसे महापुरुष से सत्संग करना चाहता हूँ और जब पूछ दिया तो बताना चाहता हूँ। प्रहलाद महाराज एक तर्क किए थे कि जो उद्यमी व्यक्ति होता है, जो काम करता है उसको धन मिलता है, जिसको धन मिलता है, धन होता है, वो भोग प्राप्त कर सकता है, अच्छा खा पी सकता है, और जो अच्छा से खाता है वही स्वस्थ रह सकता है, मोटा रहता है। मोटे लोग चाहे कितना भी तर्क दें कि हम नहीं खाते हैं, ये सब झूठी बात है, झूठी बात है। सार्वभौम प्रभु एक बार महाराज श्री से कह रहे थे कि महाराज श्री, बात वास्तव में यह है कि हम कुछ भी खाते हैं वो हमारे शरीर में घी जैसा काम करता है, और राधा रमन महाराज जी घी भी पिए तो पानी हो जाएगा और हमारा वजन बढ़ता जा रहा है। मेरे मन में एक विचार आता है, आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, अपने नाम के आगे श्री श्री 166 श्री लिखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि 108 का अर्थ बताने में बड़ा झंझट होता है, 166 क्लियर है कि मेरा वजन 166 किलो। तो एक दिन मैं उनको पकड़ लिया सुबह सुबह में 7 बजे के आसपास, 7:15 बजे, अंकुरित मूंग के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में बादाम और किशमिश और कई चीज ड्राई फ्रूट मिलाकर खा रहे थे। तब तक मुझको देखे तो ढक लिए, मैं कहा क्या है? तो ये औषधि है, कहीं दुबला होने वाला? तो कहे हाँ। तो मैं जबरदस्ती जब हटाया देख लिया तो मैं कहा हम महाराज से बताऊंगा कि पानी पीते हैं, एक घी सुबह सुबह में पानी पीते हैं वही घी हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज का कहना है कि खाने वाला ही मोटा होता है। तो भगवान दत्तात्रेय जी उत्तर दे रहे हैं कि हे प्रहलाद, मेरे प्रसन्नता का कारण है संसार के कटुता की अनुभूति करके मैं संतुष्ट हूं। संसार में अलग अलग स्वभाव वाले लोग हैं, मैं किसी से समझौता और तर्क वितर्क करने के से दूर हटकर सबकी बातें सुन लेता हूँ। सब अपने स्वभाव से ही व्यवहार करते हैं, कभी कोई मुझको आकर तुम्हारे जैसा दंडवत करता है, कभी कोई गाली देता है, कभी कोई बहुत अपमान करता है, कभी लोग मुझे उठा करके हाथी पर बैठा लेते हैं, घोड़े पर भी बिठा लेते हैं, कभी रेशमी वस्त्र भी पहना कर मुझे बड़ा सम्मान करते हैं, माला भी पहनाते हैं, दिन में कभी कभी 3 बार भी भोजन मिल जाता है, और कभी 10 दिन कुछ नहीं मिलता। तो मैं इस संसार में बहुत अनुभव किया कि बहुत दौड़ कूद में कुछ नहीं है, सब धोखा है। तो मैं अजगर से, मधुमक्खी से बहुत शिक्षा लिया, मेरे अनेक गुरु हैं। तो फाइनल यह है कि दत्तात्रेय, भगवान दत्तात्रेय प्रहलाद महाराज को बताना चाहते हैं कि संसार के कटुता का अनुभव किए बिना चित्त में प्रसन्नता नहीं हो सकती। अगर भोग की भावना बनी रहेगी तो उस आशा से चित्त दूषित रहेगा कि भोग मुझे मिलना चाहिए, और उसको प्रयास करने में भी कष्ट, प्राप्त हो भी गया तो कष्ट, सुख नहीं दे सकता। उसी प्रकार यहां जड़ भरत जी पूर्ण अनुभव के साथ भजन प्रारंभ किए हैं, पूर्ण अनुभव। अब अच्छा कुछ नहीं करना है संसार के लिए, लोगों के साथ कोई मेल नहीं, जैसा भी चलेगा सह लेंगे। तो इनके चरित्र को आप क्रमशः सुनते आ रहे हैं, ये अपने भाइयों से बहुत अपमानित थे, त्रसित थे, जंगल में खेत के रखवाली में रख दिया गया था। एक बार इनके साथ एक घटना हुई कि जंगल में रहने वाले दस्यु सरदार क्षुद्र था, पुत्र प्राप्ति की कामना से भद्रकाली की आराधना किया था और एक पशु, नर पशु का बलि देना चाहता था। उसमें खोजते हुए वे लोग जड़ भरत जी को ही पकड़ लिए, फिर भी इनको कोई अंतर नहीं हुआ। एक दिन मरना है, शायद यही हमारे मृत्यु का कारण हो, जो होगा कोई बात नहीं, चले गए। बड़े मस्ती से स्नान कराया गया, कपड़ा बनाया, सब चीज स्वीकार किए, जो खिलाया गया उसको भी खाए। जब देवी के सामने उनको बलि देने के लिए अभिमंत्रित तलवार से मारने की चेष्टा किए तो देवी प्रकट हो गई, देवी को बर्दाश्त नहीं हुआ और इसके बाद उन असुरों को मार डाली और जड़ भरत जी फिर मानो कुछ हुआ ही नहीं है वहां से आकर अपने खेत पर। किसी से एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है कि मेरे लिए देवी प्रकट हो गई, मेरी रक्षा हो गई, बहुत बड़ा कांड हो गया, कुछ नहीं। वैसे ही अपने भक्ति में पूर्ण कृष्ण भावना में आविष्ट जड़ भरत जी बैठे हुए थे। तब तक सिंधु सवीर देश के राजा रहुगण सत्संग के लिए भगवान कपिल देव के आश्रम की ओर जा रहा था। तो रास्ते में एक कहार के थक जाने पर दूसरे कहार की आवश्यकता पड़ी पालकी ढोने के लिए, तो इनको पकड़कर लगा दिया गया। तो ये कुछ अस्वीकार नहीं किए, विरोध नहीं किए, यद्यपि जबरदस्ती बलात् इनको लगाया गया था, फिर भी चल दिए। लेकिन इनको चलने में एक बार धरती को देखकर चलते थे, कोई चींटी कोई चींटा कोई जीव पैरों से दब न जाए, इससे पालकी डिस्टर्ब होने लगी, हिलने लगी। तो राजा रहुगण को थोड़ा दिक्कत अनुभव हुआ, तो उसने कहा ठीक से चला करो। फिर भी उसी तरह हो रहा था तो दूसरे कहार बतलाए कि सरकार हमारी गलती नहीं है, जो नए लगा है वही कायदा से नहीं चलता है, कभी पीछे हो जाता है कभी आगे हो जाता है। तो राजा यद्यपि आध्यात्मिक था, श्रद्धालु था, लेकिन राजा होने का अहंकार अपने आप में दोष है। तो उस अभिमान में वो कहने लगा कि अगर तुम ठीक से नहीं चलोगे तुम्हारी चिकित्सा कर देंगे। बहुत सारी बातें कहा, कहा कि तुम बहुत दुबले पतले हो, छीड़ हो, बहुत देर से ढो रहे हो, थके हो, व्यंग बोला, सबको सुनते रहे। लेकिन जब कहा कि मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा कि राजन किसकी चिकित्सा करोगे, सत्संग करने जा रहे हो, अब तक तुमको देह और आत्मा का अंतर नहीं समझ में आया। तो थोड़ा सा तर्क दिए, ये छिड़ता, स्थूलपन, मोटापन, थकावट और ये सब देह का धर्म है, मैं देह नहीं हूं कि तुम मुझको कुछ कर सकते हो। जब तात्विक बातों के साथ उत्तर दिए तो राजा पालकी से उतर गया, उतर करके इनके चरणों में गिर पड़ा, कहा आप कौन हैं इस अवधूत भेष में। तब तक उनके शरीर पर मैला कुचैला चमड़ा जैसा जनेऊ भी दिख गया, वो तो साफ करने के फेर में नहीं थे, तो एकदम भयभीत हो गया रहुगण। कहने लगा आप कौन हैं, मैं जिस भगवान कपिल देव के लिए जा रहा हूं वही अवधूत वेश में है, दत्तात्रेय जी हैं, आप हैं कौन, इस रूप में आप छिपे हुए मुझको तत्व बोध दे रहे हैं। साफ साफ अपने मानसिकता को व्यक्त करता है, मैं भगवान शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, न जमराज के दंड से, मैं भगवान के प्रेमी भक्तों के ब्राह्मणों के अपमान से बहुत डरता हूं, वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए, तो आप हैं कौन और आप कह रहे हैं कि देह इससे प्रभावित नहीं होता, तो एक तर्क देता है। शुरू शुरू में आदमी को बहुत ज्ञान रहता है, हम लोग भी शुरू में जब गुरु महाराज से मिले थे तो बहुत जिज्ञासा करते थे, यह प्रश्न वह प्रश्न, तर्क भी देते थे, ऐसा क्यों ऐसा क्यों। बाद में जब कुछ समझ में आया तो सोच सोच का संकोच होता है कि ऐसा क्यों पूछ लिया। तो लोग शुरू में जैसे भगवत गीता में अर्जुन तर्क दे रहे हैं भगवान से कि ये सब युद्ध में बहुत अनर्थ हो जाएगा, स्त्रियां विधवा हो जाएगी, वर्ण संकर हो जाएंगे, समाज बहुत दूषित हो जाएगा, और ये संतान जब पिंडोदक क्रिया करेंगे तो ऊपर गए हुए पितर भी नीचे गिर जाएंगे, इत्यादि बहुत भाषण किए। लेकिन जब बात समझ में नहीं आ रही थी, कृष्ण को गुरु स्वीकार किए, तब भगवान को प्रवचन किए। वैसे ही जड़ भरत जी उनके तर्कों को सुन करके कहते हैं इस अध्याय में, अको विदह को विद बाद बादन बदस्य तो नाथ विदाम परिष्ठ। हो वास्तव में अव्वल नंबर के मूर्ख, लेकिन बोलते हो विद्वान की तरह। अनुभव न होने पर भी एक अनुभवी व्यक्ति जैसा दंभ कर रहे हो। वो तर्क दिए थे कि जैसे किसी बर्तन में चावल रखा जाता है भात बनाने के लिए, और उसमें पानी रखकर जब आग पर रखते हैं तो आग से पहले बर्तन गर्म होता है, फिर पानी गर्म होता है, पानी गर्म होने से चावल भी उबल जाता है, उसके भीतरी भाग भी पक जाता है। उसी प्रकार आत्मा शरीर के भीतर है और शरीर के गुण धर्म से वो प्रभावित होता है। शरीर सर्दी जुखाम बुखार या तकलीफ में होता है तो भीतर रहने वाले आत्मा क्यों नहीं प्रभावित होगा? वो भी निश्चित रूप से प्रभावित होगा और होगा, होता है। तब उसको यह समझाना है मूल बात कि आत्मा नहीं प्रभावित होता, आत्मा अपने मूर्खता वश दुखी हो जाता है, उस पर कोई असर नहीं आता। वह देह को ही अपना स्वरूप मान लेता है और जो सुख दुख लाभ हानि का अनुभव करता है वह इन इंद्रियों के लीडर मन है। कभी कभी लोग कहते हैं देखो कोई आत्मा मांगता है तो उसे देना चाहिए। आत्मा मांगता है, मरते समय वो मछली मांग लेता है और कुछ भी मांग लेता है तो कहते आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर अगले जीवन में भी उसको उसके लिए आना पड़ेगा। वो जो मांग रहा है उसे देना चाहिए। प्रायः मरने वाले बूढ़ों की इच्छा के अनुसार दिया जाता है, भाई कोई ऐसी इच्छा न रह जाए जिसके कारण दोबारा आना पड़े। और लोग कहते क्या है कि आत्मा मांगता है, आत्मा को दुख नहीं देना चाहिए, लेकिन आत्मा के रूप में वो मन मांगता है। यहाँ जड़भरत जी यही बताना चाहते हैं, देखो न सूर्यो ही व्यवहार में नम तत्वा उमर सेन सहा मनंती। व्यवहार की बात विद्वान लोग आत्मा के साथ नहीं जोड़ते। जो भी संसारिक व्यवहार है वो देह का है, और इस दैहिक व्यवहार को आत्मा के साथ कोई लेना देना नहीं है, केवल बाहरी चीज है। और देखो यहाँ राजा प्रजा स्वामी सेवक ये जो संबंध है, व्यवहार है, यह केवल व्यवहार के लिए है और कुछ नहीं है। बहुत चीज समझाना चाहते हैं तुम। न तस्य तत्व ग्रहणा या साक्षात बरी असी रपि वाचा समासान। जड़ भरत जी समझ गए कि है जिज्ञासु, लेकिन प्रारंभिक अवस्था सबकी यही होती है। बेचारा तर्क दे रहा है लेकिन जानना चाहता है, इसके तर्क कुतर्क नहीं है, जिज्ञासा युक्त है, ये समझना चाहता है। बरी असी रपि वाचा समासान स्वप्ने निरीक्ता गृह में दि सौख्यम न जैसे हे अनुमितम स्वयं स्यात। बहुत सुंदर प्रवचन कर रहे हैं जड़ भरत जी। कहते हैं देखो मनुष्य को अपने मान्यता के अनुसार जो मन की मान्यता है, देह में जो आत्मबुद्धि है, उसके कारण कभी कभी कोई चीज अच्छा लगता है, कोई बुरा लगने लगता है। तो जैसे स्वप्ने निरुक्ता गृह मेधि सौख्यम, स्वप्न वास्तव में व्यर्थ है, फालतू है, कुछ है नहीं, स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन आध्यात्मिक तत्व बोध के लिए स्वप्न एक बहुत कारीगर चीज है समझाने के लिए। भागवत में स्वप्न बहुत महत्व रखता है। उदाहरण के लिए स्वप्न का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, वो वास्तव में है भी कुछ नहीं, फिर भी इसको समझाने के लिए प्रयोग किया गया है भागवत में। कहते हैं स्वप्ने निरुक्ता गृह में दि सौख्यम। स्वप्न के अंदर अगर हम स्वप्न देखते हैं रात्रि में सोए अवस्था में, तो कभी देखते हैं कि एक बहुत भयंकर सर्प हमारे पीछे चल रहा है, हम भाग रहे हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, देखते हो बार बार हमारे आगे पीछे दौड़ रहा है, बहुत भय हो गया, थकान हो रहा है, एकदम अब काट देगा, अब काट देगा, इस स्थिति में पड़े रहते हैं। और अचानक स्वप्न टूट जाए, उस दुखद घटना के साथ, तब जब होश होता, ओहो मैं तो बेड पर सोया हूं, सब व्यर्थ है। अब ज्ञान हो जाए, जग जाए, तो स्वाप्निक दुख की अनुभूति समाप्त हो जाती है, उसे कोई दुख नहीं होता। तो उस स्वप्न के अंतर्गत भागने वाला, पीछा करने वाला, जो भयंकर दृश्य था, वो कुछ नहीं था, केवल मन था, शरीर भी नहीं था, शरीर तो बेड पर सोया हुआ है, वो कहीं भाग नहीं रहा है। तो मन ही शरीर भी बना था, मन ही सांप बना था, मन ही खदेड़ रहा था, मन ही भाग रहा था, और कुछ नहीं था। वैसे ही गृह में भी सौख्यम, इस जगत के भीतर जो सुख है, कभी अगर मन मान लो स्वप्न देख रहा है कि हम विवाह में बहुत ठाट से जा रहे हैं, विवाह के लिए ससुराल में जा रहे हैं, वो सुख है, या स्त्री प्राप्त किए, या कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त किए, कोई मिनिस्टर बन गए, या कुछ जो भी, तो गृह में भी सौख्यम, घर गृहस्थी का जो सुख है, वो जो देखते हैं, नहीं जस्य हे अनुमितम, कुछ नहीं है, फालतू चीज है वहां। सुख दुख दोनों, माने सांप के पीछा करने का दुख और कुछ भौतिक भोग की प्राप्ति, दोनों तुच्छ है। स्वयं स्वतः सात, ये अपने आप मन के द्वारा हो जाता है, मन ही करता है। तो उसमें जब स्वप्न में देखे गए सारे दृश्य व्यर्थ होते हैं, ऐसे ही दिखते हैं। देखिए स्वप्न एक अद्भुत चीज है, सारी घटना भी स्वप्न ही, अनुभव भी सारा घटना मन ही निर्माण करता है, और अनुभव भी मन ही करता है। दृश्य और दृष्टा दोनों मन है, मन ही दुखी होता है इंद्रियों के साथ। तो इस प्रकार जावन मनो रजसा पुरुषस्य सत्येन वा तमसा वानुरुद्धम चेतो भिराकुर्त भिरात्नोति निरंकुशम कुशलम चेतनम वा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह मन भौतिक गुणों से प्रभावित होकर सत्व रजतम से लिप्त हो जाता है, और उसके कारण दूषित हो जाता है, और फिर स्वच्छंद अनियंत्रित हाथी की तरह घूमता है, मतवाला है। मुख्य बात है कि इसको कंट्रोल करना है। बल से युक्त एक प्राणी है हाथी, अगर हाथी पागल हो जाए, बलवान हाथी किसी को भी पकड़कर तुरंत तोड़ सकता है, खींच करके अपने पैरों तक रखकर दबा दे तो फिर मुश्किल है किसी को बचना, पेड़ के बड़े बड़े डाल को पकड़कर तोड़ देता है। वैसा निरंकुश हाथी की तरह मन है, इसको प्रमाथी भी कहते हैं, अत्यंत चित्त को प्रभावित करता है। सब आसनात्मा विषय परक्तो गुण प्रवाह विकृत षोडशात्मा। तो इसी मन के क्रिया को समझाना चाहते हैं विस्तार से। जो आत्मा की अनुभूति कर रहे हो सुख दुख की, उसकी नहीं है, वो मन का है। इसी क्रम में सब श्लोक है, और यह श्लोक दसवां श्लोक नौवे के साथ है। एकादशान मनसो हि वृत्तयः आकुतयः पंच धियोभिमानः मात्राणि कर्माणि पुरम च तासाम बदन्ति हैकादश वीर भूमि। और इसके साथ अन्वय किए हैं कई आचार्य लोग, श्रीधर स्वामी और गिरधर लाल जी दोनों के साथ अन्वय करते हैं, चक्रवर्ती ठाकुर भी थोड़ा संकेत किए हैं दोनों के साथ। गंधा कृति स्पर्श रस श्रवांसी विशाद गत्या तभी जल्प शिल्पा एकादशम श्री कर्णम अमेति सैया महम द्वादशक में माहू। तो एकादशान मनसो ही वृत्तय, मन पांच ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों का लीडर है, और इसको लेकर 11 पांच कर्म इंद्रिय और पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच पांच 10 और एक मन 11। तो आकुतयः पंच धियोभिमाना इन वृत्तयः, फिर पंच धियो भी माना, इनके साथ ये स्वीकार करता है और फिर ये 10 विषयों को भोगता है। तो मात्राणि कर्माणि पूर्वम च तासाम, और ऐसा करने के बाद इन सब को करके तब वह अपने कर्मों के अनुसार अपना अगला जीवन निर्धारित करता है। इसीलिए मन के साथ बिल्कुल तदात्म करने के कारण आत्मा को भी पुरंजन कहा गया भागवत में। वास्तव में मन सब कुछ बात करता है, लेकिन मन से और आत्मा की ऐसी गाढ़ दोस्ती हो जाती है, अभिन्न मित्रता, कि दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है। तो विविध प्रकार का कर्म करके फिर अगला जीवन तैयार करता है, और अगला जीवन माने रहने के लिए व्यवस्था, घर बनाता है। पूरम रजति इति पुरंजन, अपने लिए पूर का निर्माण करता, अपने लिए घर, जैसा सामर्थ्य है वैसा घर बनाता है, कभी सुअर का, कभी कुत्ते का, बढ़िया, कभी झोपड़ी, कभी महल, कभी राजमहल बना लेता है। तो सबसे बेस्ट महल है मनुष्य का शरीर, ये तैयार करता है, 9 गेट वाला घर, और इस पूर का निर्माण करके उसमें आनंद की अनुभूति करना चाहता है, इसलिए उसको पुरंजन कहा गया भागवत में। तो ये मन इन इंद्रियों के साथ अपना कार्य क्षेत्र में जाता है। इंद्रियों का अलग अलग जो विषय क्षेत्र है, भागवत में कई जगह एक बात को समझाने के लिए कोशिश किया गया है। इंद्रियों के जो विषय भोग का जो कार्य क्षेत्र है, जो मन का अपना लीडरशिप है, उसी को बताने के लिए पुरंजनोपाख्यान 5 अध्याय में कहा गया, एक रूपक के रूप में समझाने का कोशिश किया गया, भवाटवी का वर्णन किया गया। अभी यहां भवाटवी का वर्णन होगा आगे। तो इस प्रकार वह अपने को स्वामी मान लेता है, और इस शरीर ही उसका कार्य क्षेत्र हो जाता है, और उसमें यह मेरा घर, ये मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, इस तरह से उनकी झूठी उपाधियां, मन में अहंकार उत्पन्न होता है। तो देखिए यहां समझाया गया इस श्लोक के अंदर कि सैया मोहम द्वादशम एक माहू, जब एकादश को तो स्वीकार करता है, एकादश तो हो ही गया, जीव को फंसाने वाले कैसे हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 1 मन, 11, और स्वीकरणम ममेति, जब मन इसके साथ स्वीकार करता है कि मेरा है, यह घर मेरा है, यह धन मेरा है, स्त्री मेरी है, यह पुत्र मेरा है, राष्ट्र मेरा है, इस तरह स्वीकार करता है, तो स्वीकार करने के कारण जो एक मान्यताएं होती है उसको अहंकार कहते हैं। अहंकार, अहम, अहंकार, जब अहम मम का रूप ले लेता है, यह मेरा है, तो इस अहंकार को बरहवा तत्व कहा गया। एकादश की व्याख्या 9 में की गई, और बरहवा में कहते हैं कि यही द्वादश में एक माहु सैयाम हम, इसी में इसको स्वीकार करके यह सैयाम, यह शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है तक तो ठीक है, कुछ चलेगा, ये भी पोजीशन गलत है कि शरीर मेरा है, तो लेकिन यहां तक अगर कोई व्यक्ति स्थिर रहे तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, जैसे मेरा कुर्ता है तो ठीक है, चलो मेरा तो नहीं है, फिर भी मान लिया मेरा, तो अगर इसको कोई तोड़ता है, फाड़ता है, दिक्कत में डालता है, तो थोड़ा कष्ट होता है कि मेरे कुर्ते को फाड़ रहा है, लेकिन मैं ही कुर्ता हूं यह मान लेना बहुत खतरनाक स्थिति है। शरीर मेरा है यह भी उचित नहीं है, शरीर मेरा नहीं है लेकिन मेरा मान लेने पर थोड़ा कम कष्ट है, अब कुर्ता को फाड़ने से थोड़े अपने को कष्ट हो, इतना से ही कष्ट होगा कि मेरा है, इसको नष्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ही कुर्ता हूं यह मान लेने पर बहुत दिक्कत होगा। तो आत्मा की सबसे बड़ी गड़बड़ी है कि वो मैं शरीर हूं, इसी को देह आत्मबुद्धि, देह में ही अपनापन की बुद्धि हो जाती, मेरा है नहीं, मैं ही देह हूं, और मैं ही देह हूं, तब तो हर क्रिया में आत्मा कष्ट में पड़ जाता है। तो ये जो अहंकार है कि मैं ही देह हूं, ये बरहवा दिक्कत है, ये समस्या बरहवा है, इसको बतलाना चाहते हैं कि 11 तो तंग कर ही रहे हैं, इंद्रियां तंग कर रही अपने विषयों के लिए 10, और मन उनका लीडर, और मन के साथ वो मान्यता जो है अहंकार, वो व्यक्ति को बरहवा रूप में कष्टदायक है। और देखिए समझने लायक बात है, अहंकार इन 11 से ऊपर है, इनके द्वारा ही बनता है, लेकिन वो सबसे सर्वोपरि हो जाता है, और ये अहंकार ही किसी व्यक्ति को क्रियाशील करता है, किसी व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरणा, कुछ भी करने के लिए प्रेरणा देता है अहंकार। मैं डिवोटी हूं, मैं भक्त हूं, मुझे मंगला आरती करना चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए, भागवत सुनना चाहिए, इसकी भी प्रेरणा अहंकार ही देता है। और मैं गृहस्थ हूं, मेरे स्त्री बाल बच्चे हैं, उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, भी अहंकार। मैं भारतीय हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, क्रिकेट मैच 6 घंटा देखना चाहिए, ये भी अहंकार ही प्रेरित करता है, और उस मैच में इंडिया को जीतना चाहिए, ये भी अहंकार ही करता है। तो अहंकार के कारण व्यक्ति क्रियाशील होता है कोई भी काम करने के लिए। अहंकार, मैं बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मेरा इतना सम्मान होना चाहिए, मेरा अपमान हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जो क्रोध होता है, तो ये सब अहंकार की वृत्ति है। तो अहंकार बहुत प्रबल शत्रु है, और वही अहंकार जो माइक अहंकार जीवों को कष्ट देता है, अगर स्वरूपगत अहंकार के रूप में हो जाए, अपने स्थिति में आ जाए, तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जीव रस स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, यह अहंकार असली अहंकार है, और इस अहंकार में आने से सारी समस्या दूर हो जाता है। तो यहां यही समझाना चाहते हैं कि जो विविध प्रकार के अहंकार हैं, विविध प्रकार के विषय हैं और इंद्रिय हैं, 9 में इंद्रियों के विषय में बताया गया, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 10वां में उनके विषयों को बताया गया, गंध, कृति, स्पर्श, रस, श्रवांशी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ये ज्ञान इंद्रिय के विषय हैं। ज्ञान इंद्रिय के द्वारा इनका अनुभव करते हैं, गंध का अनुभव नाक से करते हैं, रूप का अनुभव आंख से करते हैं, एक के क्षेत्र है, विषय है, और स्पर्श का अनुभव त्वचा से करते हैं, रस का अनुभव जीभ से करते हैं, और शब्द का अनुभव कान से करते हैं। इन 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा इन विषयों का अनुभव करते हैं, और फिर कर्म इंद्रिया, मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना, एक कर्म इंद्रियों का व्यवहार है। मुख से बोलते हैं, भाषण करते हैं, हाथ से लेना देना, पैर से चलते हैं, और मल द्वार, मूत्र द्वार, इसको संभोग और मल त्याग इत्यादि कहते हैं। तो ये 5 कर्म इंद्रियों के विषय हैं, 5। और फिर यह शरीर मेरा है, इस रूप में इसको स्वीकार करना, यह अहंकार है, तो मैं ही शरीर हूं। कुछ लोग अहंकार को मन की 12वीं वृत्ति कहते हैं, यही कह रहे हैं, सैया महम द्वादश, आहू आहू माने कहा जाता है, कुछ लोगों का कहना है कि यह 12वां वृत्ति है, और उसके आश्रय शरीर इसके 12वां विषय है, इसके द्वारा वो विषय भोगता है। तो सब मिलाकर व्यक्ति को यह समझना बहुत जरूरी है कि यह मन इंद्रियों का भी कंट्रोल करता है, अहंकार को भी कंट्रोल करता है। देखिए, अहंकार भी मन की ही वृत्ति है, ऐसे अंतः चतुष्टय में चार हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। लेकिन सबसे हावी मन ही रहता है, बुद्धि को भी समझा देता है, जबकि बुद्धि मन से उत्कृष्ट है, अहंकार से उत्कृष्ट मन, मन से उत्कृष्ट बुद्धि और बुद्धि से उत्कृष्ट चित्त। लेकिन बुद्धि को भी समझा देता है। पुरंजनोपाख्यान में तो बुद्धि को ही पुरंजनी कहा गया, वही पुरंजनी है। और वो आत्मा को इधर उधर मन से जब आसक्त हो जाती है, मन में आसक्त बुद्धि होती है, तो बहुत आत्मा को दुख देती है, बुद्धि को भी समझा देता है। अगर मान लीजिए कोई फिल्म देखने का मन किया, चलो यार देख लेते हैं, तो बुद्धि कहती है अरे नहीं, हम तो साधु हैं, ऐसे कैसे करोगे, नहीं देखना चाहिए। अरे क्या हो गया, ये अनुभव हो जाएगा, हम थोड़े इसी में लिप्त होने वाले हैं, भजन तो करेंगे, जब करेंगे, देख लेते हैं। तो बुद्धि के पास दो फेज है, सद असत विवेकवती, अच्छा बुरा, यही करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तुरंत रोकती है नहीं करना चाहिए। अब मन जब हावी हो जाता है तो समझा देता है, क्या दिक्कत है कर लेने में, फालतू टेंशन है, टेंशन में नहीं रहना चाहिए, कर लेना चाहिए। तो मन बुद्धि के अनुरूप, बुद्धि मन के अनुरूप हो जाती है और ये दिक्कत में पड़ डाल देता है। तो यह मन इस तरह से धोखा देता है। मन के विषय में शास्त्रों में बहुत बातें कही गई। एक उपनिषद में अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विशेष विषयासंगो मुक्तई निर्विषहम मन, निर्विषयम मन। तो मन मनुष्य के कारण और बंधन दोनों के कारण है। तो बंधन का कारण क्या है कि बंधाय विषयासंगो, जब विषय से आसक्त हो जाएगा, कि संघ का अर्थ भागवत में आसक्ति किया गया है, जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करते हैं, संगम आसक्ति। जब विषय के साथ मन का संग होता है, आसक्ति होती है, तब बंधाय और मुक्तई निर्विषयम मन। अगर मन विषय से मुक्त निर्विषय हो गया तब मुक्त। भगवान भी कहते हैं कि देखो भाई, बंधन और मोक्ष अपने हाथ हाथ में है, उधरे दात मनात्मान नात्माना व साधयत, नात्माना व साधयत, आत्मयुव ही आत्मनो बंधु आत्मयुव रिपुरात्मन। यहां आत्मा का अर्थ मन है, मन ही व्यक्ति के बंधन का कारण है और मुक्ति का कारण। जब वह विषयों से युक्त हो जाता है तो बंधन में, और उसे निकल जाता है तो मुक्त कर देता है। और एक विचित्र बात है कि मन को जब हम छूट देते हैं, विषयों के साथ संयोग करते हैं, तभी बंधन होता है। पूर्व महाराज एकादश स्कंद भागवतम में 26वें अध्याय में एक श्लोक बोलते हैं कि अदृष्टाद असुताद भावा न भाव उपजायते, न भाव उपजायते, अदृष्टाद असुताद भावा न भाव उपजायते। जब तक कोई दृश्य देखा न जाए और जिसके विषय में सुना न जाए, तो मन में कोई भाव नहीं आता है, देखने और सुनने से आता है। अदृष्टाद असुताद, मन जो है, चित जो है, अंतःकरण एक लेंस की तरह है, कैमरे की लेंस की तरह, उसके सामने जो चित्र आएगा उसको नेगेटिव कर लेगा। तो वो दो तरह से लेता है, एक देखने से और एक सुनने से, दूसरा सुनने से। जितने भी मन में विकृति हो रही है देखने और सुनने के कारण, अदृष्टाद अश्रुताद, अगर न देखा जाए न सुना जाए तो न भाव उपजाए थे, मन में कोई भाव नहीं आएगा। तो क्या किया जाए, एक कमरे में बंद कर दिया जाए, उसको कहीं देखने न जाने दिया जाए या सुनने न दिया जाए, अतः नहीं, उसको आप देखें सुने लेकिन असंप्रयुंजत प्राणान, मन को उन विषयों में आसक्त न होने दें। अगर वो विषयों के साथ इंद्रिय का संयोग न किया जाए तो प्राणन साम्यति स्मितम मन, मन अपने आप शांत हो जाएगा। उसको छूट न दिया जाए मन को, मन को कंट्रोल करना पड़ता है, कंट्रोल करना पड़ता है, ऐसा मत करो ऐसा मत करो, लेकिन इस तरह बहुत कठिनाई है, उसको पकड़ना बड़ा कठिन है। अर्जुन जैसे महारथी अति रथी भी कहते हैं मन चंचल कृष्ण प्रमाथी बलव दृणम, यह बहुत कठिन है, चित्त को मत देती है, मत देता है सारे इंद्रियों को, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। कहते हैं अपने आप शांत हो जाएगा। पुरुरा महाराज कहते हैं जैसे आग में, जजाति महाराज भी कहते हैं पुरुरा महाराज भी, कि अगर विषय न दिया जाए इन मन को तो शांत हो जाएगा। जैसे जलते हुए अग्नि में ईंधन न दिया जाए तो आग अपने आप बुझ जाएगी, ईंधन पाने से वो जलती है। तो इंद्रियों को विषय दिया जाता है तब इंद्रियां प्रबल होती है, भोगना चाहती है, अगर उसको विषय न दिया जाए तो शांत हो जाएगा। और ये इतना खतरनाक है कि हद से बाहर। एक बार परम पूज्य नवजोगेंद्र महाराज एक उदाहरण दे रहे थे, बहुत हंसा रहे थे, कहे कि मन एक बदमाश भूत की तरह है, जीन की तरह। एक व्यक्ति संयोग बस रोज बाहर खेतों में शौच जाता था पानी लोटा का लेकर, और उधर से थोड़ा बच जाता तो एक पेड़ था बड़ का, वहीं गिरा देता, बट वृक्ष था वहीं गिरा देता था, रोज ऐसा करता था। तो उस पर एक जीन रहता था, जो मुसलमानों का पिशाच भूत होते हैं उनको जीन कहते हैं। तो प्रकट हो गया, बड़ा कुरफाती होते हैं जीन दैत्य, तो प्रकट हो गया और कहा कि आपने मुझे संतप्त अवस्था में पानी पिलाया है, बहुत दिनों से मैं प्यासा था, मुझको आप कई दिन 20 दिन से पानी पिला रहे हैं, बोलिए आपको क्या चाहिए, जल्दी बोलिए, देर करेंगे तो खा जाऊंगा। तो अब सोचने लगा अब क्या करें, कहे कि मेरा घर फर्स्ट क्लास बना दो। तो घर बना दिया एकदम बढ़िया, उसमें सारा सामान रख दो। तो खुशदा कर अब क्या करें, तो और सब ये सामान लाओ वो सामान लाओ सब तुरंत तुरंत ला कर, अब जल्दी बोलिए नहीं तो खा जाऊंगा। लगा परेशान करने, तो आदमी बहुत होशियार था, देख लिया कि ये तो बहुत काम का चीज है लेकिन उतना ही खतरनाक भी है। तो कहा कि एक लंबा बांस लाओ, बहुत लंबा। तो लाया, इसको गाड़ दो, गाड़ दिया, ऊपर चढ़ो, चढ़ा, नीचे उतरो, नीचे उतरा, चढ़ते उतरते रहो जब तक मना न करो। वही फंसा दिया कि इसी पर चढ़ो और उतरो। उसी प्रकार मन जीन है, अगर ये अनुकूल हुआ तो धोखा डाले देगा, अगर मन खुश हो गया तो एकदम तैयार हो जाएगा, खुश हो गया तो कुछ देने के लिए तैयार है। अगर उसके अनुसार देर कर दिए, उसको नहीं लगाए सेवा में, तो खा भी जाएगा। तो इस मन को जैसे वो बुद्धिमान व्यक्ति बांस में लगा दिया जीन को, वैसे 108 दाने वाले माला में लगा दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यहीं पर पड़ा रहो। अगर उसको फुर्सत देंगे तो तुरंत सिनेमा हॉल में चला जाएगा, इधर उधर कुछ उत्पाद कर ही देगा। और पुरुरा महाराज की एक महत्वपूर्ण बात है जो अंतिम आपको कहना चाहता हूं, कि अगर मन को बलात् जबरदस्ती कुछ करते हैं तो मानने वाला नहीं है, लेकिन उसका बेस्ट उपाय बतलाते हैं पुरुरा महाराज कि ततो दुसंग मुत्सृज्य, मन का जो गलत संग है इधर उधर उसको छोड़कर सत्सु सज्जत बुद्धिमान, बुद्धिमान विवेकी व्यक्ति का कर्तव्य है कि साधु पुरुषों के साथ जुट हो जाए, और सत्संग को छोड़कर दुसंग को छोड़कर अपने विवेक से सत्संग अटेंड करे। सत्संग में क्या होगा कि संत एतस्य छिन्दन्ति, संत जो है अनेक जन्मों के ग्रंथि को तोड़ देते हैं। देखिए लोग इस संसार में समस्याओं के निपटने के चक्कर में पड़ते हैं कि यह काम कर ले वो काम कर ले, और अधिक उलझते जाते हैं। जितना निपटाना चाहते हैं उतना ही उलझन बनता है, एक ग्रंथी बनती जाती है। कोई भी कर्म करते हैं तो एक समस्या बन जाती है, कर्म छोड़ता नहीं है। चलो थोड़ा सा एक दुकान खोल लेते हैं, थोड़ा पैसा आता रहेगा, भजन ठीक से करेंगे, अब उसके चक्कर में पड़े, इतना पैसा लगा दिए, अरे कुछ हो नहीं रहा, वहां तो बैठना पड़ेगा, कुछ प्रचार करना पड़ेगा, ऐसा वैसा, फंसते जाते हैं। उसको छोड़ते बनता है, न करते बनता है, ग्रंथी ग्रंथी बनती है, उसको हृदय ग्रंथी कहते हैं। अनेक ग्रंथियों के बंधन में जीव जकड़ जाता है, वो निपटाने के चक्कर में उलझ जाता है, अपनी बुद्धि लगाता है ऐसा करेंगे तब तक फंस जाता है। तो अपने बुद्धि से वो नहीं निकल पाएगा, वो ग्रंथि नहीं टूट पाएगी। संत एतस्य छिदन्ति, उस ग्रंथ को साधु ही तोड़ सकता है। संत कैसे तोड़ता है, उसके पास कौन हथियार है, किस चाकू से किससे तो काटता है उस ग्रंथि को। मनोव्यासंग, मन की जो व्यासंग का अर्थ है विशेष रूप से जो जकड़न है, व्यासंग में विशेष संग, विशेष आसक्ति है जो मन की, जन्म जन्मांतर का जो जकड़न है उसको साधु पुरुष तोड़ देता है। उक्ति भी अपने वाणी से, अपने प्रवचन के हथियार से उसको काट देता है। ये है सत्संग की महिमा, जब दिव्य तत्व की प्रवचन करता है तो उस हथियार से मनोव्यासंग मुक्ति भी, मनोव्यासंगम उक्ति भी, उक्ति के द्वारा, अपने प्रवचन के द्वारा उस जन्म जन्मांतर के जकड़े हुए बंधन को काट देता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आप कहेंगे कि दूसरे जगह से इसका समाधान बता रहे हैं, इसमें जड़ भरत जी क्या समाधान बताए हैं, तो देखिए जड़ भरत जी का समाधान अंतिम श्लोक आपको इस प्रवचन का, इस अध्याय का अंतिम श्लोक यही है। भ्राति विमेनम तदभव वीर्य मुमेक्षया मुपेक्षया धेतितम प्रमत्तः गुरोर हरे चरणोपासनास्त्रो जही बेलिकम स्वयमात्म पोषम। कहते हैं इस दुर्दम मन, जो बहुत बड़ा शत्रु है, बहुत बड़ा बंधन है, इसको तोड़ने का क्या उपाय है। गुरोर हरे चरणोपासनास्त्रो, गुरु और चरण, गुरु और हरि के चरण की उपासना रूप अस्त्र से, असी से जही इसको काट डालो। गुरु के शरण लो और गुरु का जो उपदेश है उसी सफल उपदेश हथियार से इस मन काटा जा सकता है। वही संत एतस्य छिदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी, संत ही काट सकते हैं। गुरु और हरे चरण उपासनास्त्र, गुरु और हरि के चरण की उपासना रूपी असी से, तलवार से मन के इस जकड़न को काटा जा सकता है, इस उपासना किया जा सकता है। तो इसको कहते हैं इस रूप में, तो उसको उस अस्त्र से, उपासना रूप अस्त्र से जही जीत लो, यह तलवार यह हथियार उसे काट लो और इससे तुम मुक्त हो सकते हो। खुद स्वयं जड़ भरत जी बता रहे हैं। तो यही है, ततो दुसंग मुत्सृज सत्सु सज्जित बुद्धिमान संता एतस्य छिदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। जन्म जन्मांतर के जकड़न समाप्त हो जाएगा, सारा बंधन टूट जाएगा। ऐसे मानने वाला नहीं है, इसी का प्रवचन कर रहे हैं कि रहुगण तुम फंसे हुए हो, सत्संग करो। तो बहुत अच्छा हथियार लेकर जड़ भरत जी उनके राजा रहुगण के सारे कर्म बंधन को काट दिए। और वहां वास्तव में एक कहार के मुख से प्रवचन सुनकर मुक्त हो गया। बाद में उसको और ज्यादा रियलाइजेशन देने के लिए, जब गुरु किसी शिष्य पर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत अच्छे ढंग से समझाना चाहते हैं, तो अपने जीवन में कृष्ण प्रेम का जो अनुभव है उसको बताते हैं अपने उदाहरण से। भागवत में ऐसा कई बार देखा गया, व्यास देव को समझाने के लिए देवर्षि नारद को अपना उदाहरण ही बेस्ट लगा कि मैं पहले दासी पुत्र था, भक्ति के प्रभाव से देखो मैं आज ब्रह्मा का पुत्र हूं। ठीक उसी प्रकार जड़ भरत जी आगे समझाएंगे कि राजन असली बात कह दूं, एकदम परम गोपनीय बात है, तुम एक छोटे क्षेत्र का राजा हो और इतने अहंकार में मतवाला हो, जिस व्यक्ति के नाम पर पूरे देश का नाम भारतवर्ष है वो कोई दूसरा नहीं, अहम पूरा भरतो नाम राजा, मैं ही पहले भरत नाम का राजा था, राजर्षि भरत। अरे आप तो यहां कैसे पड़े हैं? तब कहते हैं कि हाँ, मैं भजन करने के लिए आया, एक हिरण में आसक्ति होने के कारण मैं हिरण हो गया दूसरे शरीर में, और तीसरे बार मैं ब्राह्मण शरीर में जड़ भरत पूरे बोध में हूं, होश हवास में। तो इस तरह जब अपना उदाहरण दिए तो राजा रघुगण तो एकदम चकित हो गया। एक छोटे मंडल का राजा था, एक राज्य का चीफ मिनिस्टर था, और ये तो पूरे विश्व के सार्वभौम सम्राट थे। मैं भी कभी पालकी पर चलता था, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। इस तरह से जब समझाए तब जाकर एकदम क्लियर हो गया। तो मन की इस दुर्दशा का प्रवचन कर रहे हैं जड़ भरत जी। मन फंसा हुआ है बुरी तरह, और आदमी सोचता है कि हम बहुत काबिल हैं, मन ही काबिल बना देता है, लेकिन इसको अपने बस में करने का उपाय है साधु संग, साधु के मुख से सुनकर यह कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। कोई जिज्ञासा? अरे लेट हो गया।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बोला मन के ऊपर बुद्धि और बुद्धि के ऊपर चित्त, मन चित्त को ऊपर भी हावी हो जाता है, तो चित्त जो है वो सच्चिदानंद का चित्त है या दूसरा को?
क्या क्या
आपने बोला कि मन बुद्धि को भी वश में कर लेता है और उसके ऊपर जो चित्त है उसको भी वश में कर लेता है, तो जो चित्त आपने शब्द यूज किया वो सचित आनंद वाला चित्त है कि और कुछ?
वही चित्त है, लेकिन वो चित्त, ये चित्त प्राकृत है। सत चित आनंद जो भगवान का स्वरूप है वो तो स्पिरिचुअल है। ये चित्त का अर्थ ज्ञान बोध, तो सारा ज्ञान सारी बोध को भी समाप्त कर देता है, और बोध के अनुसार विचार ये बुद्धि है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये प्राकृत चित्त है, वो सत चित आनंद वाला तो अपना स्वरूप है, वो प्राप्त हो जाए तो फिर वो बुद्धि के बस में क्यों होगा?
तो अपना जगाई माता के सामने भरत महाराज का जो दोष था एकदम मामूली था, जगाई माता ने जो जो पाप किए थे या दोष किए थे उसके सामने भरत महाराज का तो एकदम मामूली दोष था, तो जगाई माता का उद्धार हो गया और ये उनको दो जन्म लेना पड़ा, ऐसा कैसे?
जगाई मदाई के उद्धार के लिए स्वयं भगवान उपस्थित हुए थे, और जड़ भरत जी का दोष कैसे गुरुतर कह रहे हैं, कम कैसे कह रहे हैं? जड़ भरत जी इस दैहिक व्यवहार में भी इनसे कम दोष जगाई मधाई का है ना। जगाई मधाई के विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये लोग कहाँ पापी थे, वो तो आपके धाम में जन्म लिए थे, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, आपका दर्शन करते थे, आपके नाम का कीर्तन भी करते थे, भले अनजान में। सही चैतन्य भागवत में है, जगाई मधाई श्रीवास जी के आंगन दरवाजे पर खड़ा होकर रात भर मटका लेकर नाचते थे, कहते थे अरे ये निमाई चंडी पूजन करा रहा है, क्या मृदंग बज रहा है, कमाल कर दिया, और मृदंग के आवाज पर नाचते थे। तो भले अनजान में लेकिन आपका कीर्तन किए, और उनको आप पवित्र करके दुनिया में यशस्वी बने हुए हैं कि पतित उद्धारक हैं, उसमें कौन सा परिश्रम लगा है? अरे परिश्रम दुनिया जान जाएगी जब हमारे जैसे पापी का उद्धार कर देंगे, रूप गोस्वामी कहते हैं। तबे तो पतित पावन नाम तबे तो सफल, कह रहे हैं कि पतित पावन नाम तब सफल होगा जब हम ब्राह्मण होकर भी मुसलमान के यहाँ गाय का मांस खाकर उसकी नौकरी कर रहे हैं, गो ब्राह्मण के साथ द्रोह कर रहे हैं। ऐसे अधम का उद्धार कर लो तब पतित पावन नाम सार्थक होगा। नाम कमाने आए हो तो कुछ कर लो। तो रूप गोस्वामी के शब्दों में तो जगाई मधाई का कोई पाप ही नहीं है। और यहाँ जड़भरत जी तो बिल्कुल कृष्ण से बहिर्मुख होकर चले थे, भजन करने हरिण में फंस गए। तो ये अपराध हो पाप ज्यादा जरूर किए थे, लेकिन यहाँ जड़भरत जी का भी देहात बुद्धि सबसे बड़ा दोष है। कृष्णेतर चीज में फंस जाना, कृष्णेतर किसी भी विषय में लगना जीव का बड़ी भारी दुर्गति है। हरे कृष्ण।
रोजी मन और चित्त में क्या डिफरेंस है पता नहीं चलता रोजी, माइंड और कॉन्शियसनेस। चित्त रोजी इसको कॉन्शियसनेस ही कहेंगे।
देखिए मन तो कंट्रोलर है माने इंद्रियों का, और चित्त बोध को कहते हैं जो ज्ञान, जैसे सच्चिदानंद की चर्चा किए। सत का अर्थ होता है सत्ता, जो अनादि काल से अनंत काल तक रखे, सत्य परमानेंट। और चित्त का अर्थ है ज्ञान, बोध, बोध जो सबके हृदय में, अनंत कोटि जीवों के हृदय में क्या हो रहा है, प्राकृत जगत में क्या हो रहा है, प्राकृत ये सबका बोध रखते हैं भगवान, वो चित्त है। तो उसी प्रकार के इस चित्त का भी अर्थ है जो जीव को कुछ न कुछ जो बोध होता है, ज्ञान होता है, उसको चित्त कहते हैं। और मन उससे थोड़ा सा अलग है, वो नियामक है इंद्रियों का, उनके कार्य क्षेत्र से उनके अंतर को समझते हैं थोड़ा थोड़ा। ऐसे बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। चित्त ज्ञान का वास्तविक विषय है भगवान, भगवान विषय है। और जब उस विषय से हट जाता है चित्त तब वो दूषित हो जाता है, उसी को कॉन्शियसनेस चित्त कहते हैं, उसी को शुद्ध करना है, क्लियर। अगर वो ठीक हो जाए तब सब चीज ठीक हो जाएगा। कोई विद्या या किसी ज्ञान की सार्थकता है भगवान को समझने में। तत्कर्म हरितोषम जत सा विद्या तन्मति रेया। विद्या वास्तव में वह कर्म कर्म है जिस कर्म से भगवान संतुष्ट हो जाए। देवर्षि नारद कह रहे हैं पुरंजनोपाख्यान में, तत्कर्म हरितोषम जत, वह कर्म सार्थक कर्म है जो हरि को संतुष्ट कर दे। सा विद्या तन्मति रेया, वह विद्या सफल है जो मति को कृष्ण में लगा दे। तो चित मति, मति मतलब मन, चित दोनों एकदम एक जैसे हैं, थोड़ा सा अंतर है। तो उसी मति को कॉन्शियसनेस कहते हैं, मन भी कहते हैं, चित कहते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है। अपने बोध को अपने ज्ञान को भगवान में लगा देना, भगवान को समझ लेना, ये चित की सफलता है या मन की सफलता है। मन जो इधर उधर जा रहा है, मन है कंट्रोलर और चित बोध को कहते हैं, ज्ञान को। थोड़ा सा अंतर है, इसको फिर कहीं विस्तार से आचार्यों के टीकाओं में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर किए हैं। अरे वो मन की अंतर तो आप छोड़िए, आत्मा और मन में अंतर नहीं लोग कर पाते हैं, शरीर और आत्मा में अंतर नहीं करते हैं। शरीर मैं शरीर हूं, इतनी स्थूल स्थिति में इतना सूक्ष्म तत्वों का विवेक होना बहुत कठिन है ना। हम तो एकदम स्थूल बुद्धि में हैं, पूरा देहात्म बुद्धि में हो गए हैं। तो इस बारीकी को समझने के लिए उस स्तर पर जाना पड़ेगा धीरे धीरे। हमारी मान्यता थोड़ा भोथर हो गया है, स्थूल सूक्ष्म नहीं है, एकदम सूक्ष्म ज्ञान है मन बुद्धि के अंतर को समझना। ठीक है। हरे हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।